exactly 9th January 1996 कुमारों से मुलाकात। सामने सारी ज्यादा माताएं, कुमारों को भी चांस मिलेगा जब सेवा बहुत बढ़ेगी। इतनी सब आत्माओं को संदेश देना है तो क्या थोड़ी सी आत्माएं कर सकेगी? तो आप लोगों को चांस मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसे पहले से तैयार हो जाओ। जो टीचर्स को सप्ताह कोर्स कराना पड़ता है और आप एक सेकंड में अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा परिचय दे सको, ऐसी सेवा कुमारों को करनी है। अभी देखो, बाप दादा स्पष्ट सुनाता है कि कुमारों को सेंटर पर क्यों नहीं रखते हैं। कारण क्या है? डर लगता है दादियों को, और कभी कभी प्रैक्टिकल में नुकसान होते भी है। ऐसे ही डर नहीं लगता, होता भी है। अगर कुमार पक्के योगी बन जाए, जरा भी सिवाय आत्मा के और कोई बात में जाए नहीं, तो कुमारों को बहुत सेवा केंद्र मिल सकते हैं। अभी नुकसान का डर है, क्योंकि क्यों नुकसान का डर है? कच्चे हैं, और नुकसान का क्यों डर है? सेंटर पर क्यों नहीं रखते? अर्थात सेंटर चलाने के लिए क्यों नहीं देते? केवल जैसे विदेश में चलाते हैं भाई, वैसे क्यों नहीं है? क्या है? अहंकार बहुत ज्यादा है। क्या रखा है? रावण की चीज। आपने पढ़ा है? क्योंकि रावण की चीज अंदर रखी है ना। कौन सी चीज? इसलिए डर लगता है। लेकिन जो कुमारियों ने इतने वर्ष में सेवा की, कुमार फास्ट सेवा करेंगे, चांस बहुत अच्छा मिलना है। लेकिन पहले तैयार हो जाओ, पहले दादियों को बेफिक्र बनाओ। जहां कुमार कुमारियां इकट्ठे रहते हैं ना, तो डर लगता है। फॉरेन की बात अलग है, वहां तो फीमेल भी मेल है, मेल भी फीमेल है, वहां की बात अलग है। लेकिन भारत में अगर दो तीन भाई सेंटर चलाए तो क्या हो जाए? भारत में अगर दो तीन भाई सेंटर चलाए तो झगड़ा। तो पहले तो लोग डिस्कस करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे, और जोश होता है ना तो डंडा भी लगा सकता है। इसलिए आप तैयार हो जाओ, आपको सेवा बहुत मिलनी है। और जितना कुमारियों को सेवा का चांस है, ऐसे अगर आप पक्के योगी बन गए तो थोड़े समय में आपका खाता भी उतना ही जमा हो सकता है। लेकिन बाप दादा को दिल से गारंटी दिलाओ। कागज वाला बाप दादा नहीं मानते। अगर कागज पर पानी और स्याही से नहीं, खून से भी लिख कर देते हैं और एक मास के बाद कुमार से युगल बनकर आते हैं, तो ऐसी गारंटी नहीं चाहिए। लेकिन डायमंड जुबली में बाप दादा ने देखा कि कुमार बहुत अच्छा, सबसे नंबर वन पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कुमार समय को भी समीप ला सकते हैं। समय समीप आ जाएगा और आपकी सेवा विशाल होती जाएगी। लेकिन बाप दादा रोज वतन में चेक करते हैं। ऐसे ही नहीं, कोई यहाँ कहेगा तो मान लेंगे, प्रैक्टिकल बाप चेक करेगा। फिर देखो, कुमार फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। समझा? संदेश देने में तो कुमार वैसे भी होशियार हो। और देखो, जिस सेंटर पर कुमार नहीं आते हैं तो वहां सेवा की वृद्धि नहीं होती। ऐसे है ना टीचर्स? टीचर्स कहती है सेवा के लिए किसको भेजे, तो कुमार अभी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये पक्का निश्चय कर लो कि हम है ही योगी आत्माएं, सदा योगी है, शरीर की तरफ स्वप्न मात्र भी ध्यान आकर्षण संकल्प नहीं जाए। तो कुमार कमाल करना, बाप दादा आपको चेक करके ग्रुप बनाएगा। 9 जनवरी 1996 अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात। कुमारों को भी चांस मिलेगा जब सेवा बहुत बढ़ेगी। इतनी सब आत्माओं को संदेश देना है तो क्या थोड़ी सी आत्माएं कर सकेगी? तो आप लोगों को चांस मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसे पहले से तैयार हो जाओ। चांस तो मिलेगा, परंतु क्या करना है, पहले तैयारी करके रखना है। जो टीचर्स को सप्ताह कोर्स कराना पड़ता है, और आप लोग क्या करेंगे, दृष्टि वृत्ति द्वारा एक सेकंड में परिचय दे सको। अवसर आएगा, परंतु स्वयं को पहले क्या करना है, तैयार करके रखना है। कितना तैयार करके रखना है कि जो उनको एक सप्ताह लगता है कोर्स कराने के लिए, आपको कितना समय लगे, एक सेकंड। तो इतनी दृष्टि वृत्ति पवित्र हो, पावन हो, एक सेकंड में अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा परिचय दे सको, ऐसी तैयारी करनी करके रखनी है। ऐसी सेवा कुमारों को करनी है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण कश्यप। जब उसकी साधना पूरी हुई तो उन्होंने उससे कहा कि अब तुम तैयार हो, जाओ जाकर सेवा करो। तो उसने कहा हाँ मैं तैयार हूं, मुझे आपका संदेश जन जन तक पहुंचाना है। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? तो वो कहते हैं मैं बिहार में एक गांव है जिसका नाम सूखा गांव था, वहां जाऊंगा। तो बुद्ध उससे कहते हैं कि वहां ना जाओ, वहां के जो लोग हैं बहुत ही निर्दयी है, वहां के जो लोग हैं बहुत ही अधार्मिक है, वहां के जो लोग हैं बहुत ही सताने वाले हैं, वहां तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। परंतु वो कहता है इसीलिए मुझे वहीं जाना है क्योंकि उन्हीं आत्माओं को उन्हीं लोगों को आपके संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो बुद्ध उससे कहते हैं ठीक है जाना, परंतु पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो। यदि तुम वहां गए और वहां के लोगों ने तुम्हें गालियां दी, तुम्हें तुम्हारी निंदा की, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें भला बुरा कहा, तो तुम क्या करोगे? वो कहता है कि आप जानते हो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। क्यों खुशी होगी मुझे ये सोचकर कि मुझे केवल गालियां दी, मुझे केवल बुरा बुरा कहा, मुझ पर केवल व्यंग बाण छोड़े, परंतु मुझे मारा तो नहीं। दूसरा प्रश्न पूछते हैं तब क्या करोगे? यदि वो तुम्हें मारे पीटे और तुम्हारी बिल्कुल ना सुने, वो कहता है आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, मुझे केवल मारा, मार ही नहीं डाला, मार तो नहीं डाला ना, केवल मारा, इसके लिए मैं खुश होऊंगा कि केवल मुझे मारा। और ये तो बहुत छोटी चीज है क्योंकि जो संदेश मैं लेकर जा रहा हूं वह बहुत बड़ा है। तो मैं खुश इसलिए भी होऊंगा कि मुझे मार ही नहीं डाला, केवल मारा। तीसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि तब क्या करोगे? यदि वो तुझे मार ही डाले तो क्या उत्तर होगा?
आपके लिए आपके संदेश के कारण ही मार खाई, कोई बात नहीं।
वो कहता है अच्छा ही है, जीवन व्यर्थ वैसे भी व्यर्थ ही जा रहा है, जीवन की इच्छा है, जीवन में कोई संतुष्टता नहीं। वैसे जीवन से जो संसारी लोग जीते उससे तो महान संदेश के लिए, महान कार्य के लिए यदि जीवन समाप्त हो जाए, यदि प्राण तन से निकल जाए तो ये मैं अपना भाग्य ही समझूंगा। बुद्ध उससे कहते अब तू तैयार है, अब जा। ऐसी तैयारी चाहिए थी। धर्म की स्थापना इन तैयारियों से हुई है, सब कुछ सहन करने की तैयारी। एक एक धर्म जो स्थापित हुआ है, एक एक धर्म के धर्म स्थापक में और धर्म को पालन करने वाले उन अनुयायियों ने बहुत कुछ सहन किया है, चाहे ईसाई धर्म चाहे इस्लाम धर्म। एक एक धर्म के इतिहास को देखो तो एक एक अनुयायी को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जीसस क्राइस्ट के जितने ही शिष्य थे, जीसस क्राइस्ट को तो सूली पर चढ़ाया गया, उसके शिष्यों को तो उससे भी अधिक यातनाएं दी गई। सूली पर तो चढ़ाया, एक शिष्य ने तो कहा मुझे उल्टा नंबर लटका दो, बहुत यातनाएं सहन की, बहुत ज्यादा यातनाएं। किसी किसी को जिंदा जलाया गया, चाहे इस्लाम चाहे ईसाई या चाहे कोई भी बड़े बड़े धर्म जो स्थापन हुए तो। परंतु उन सभी की मर मिटने की तैयारियां थी, एक ही जैसे उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था, बस ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है, और कोई लक्ष्य नहीं जीवन में। इस लक्ष्य के लिए यदि यह देह भी समाप्त हो जाए तो भी तैयार थे। बाबा कह रहे हैं कुमारों को भी चांस मिलेगा, जब सेवा बहुत पड़ेगी, इतनी सब आत्माओं को संदेश देना है तो क्या थोड़ी सी आत्माएं कर सकेगी? तो आप लोगों को चांस मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसे पहले से तैयार हो जाओ। जो टीचर्स को सप्ताह कोर्स करना कराना पड़ता है, आप लोग एक सेकंड में दृष्टि वृत्ति द्वारा परिचय दे सको तो वह दृष्टि और वह वृत्ति कैसी होनी चाहिए कि जो एक सेकंड में आत्माओं को परिचय दे? वह दृष्टि कैसी होनी चाहिए और वह वृत्ति कैसी होनी चाहिए? कितनी पवित्र वह दृष्टि होनी चाहिए? विकारों के इन कटर में अब नहीं जाओ, कल बाबा ने कहा था। तो एक सेकंड की अपनी दृष्टि और वृत्ति द्वारा परिचय दे सको तो दृष्टि को स्मृति को ऐसा पवित्र बना दो कि जो वृत्ति निर्माण हो वही सेवा कर दे। ऐसी सेवा कुमारों को करनी है। अभी देखो बाप दादा स्पष्ट सुनाता है कि कुमारों को सेंटर पर क्यों नहीं रखते, कारण क्या है? डर लगता है दादियों को, और कभी कभी प्रैक्टिकल में नुकसान होते भी है। ऐसे ही डर नहीं लगता, होता भी है। अगर कुमार पक्के योगी बन जाए, जरा भी सिवाय आत्मा की और कोई बात में जाए नहीं, तो कुमारों को बहुत सेवा केंद्र मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं? जब पक्के योगी बन जाए तब। कब मिल सकते हैं? जब जरा भी सिवाय आत्मा के और कोई बात में जाए नहीं। अभी नुकसान का डर है, क्योंकि क्यों डर है नुकसान का? रावण की चीज अंदर रखी है ना। कौन सी चीज? रावण की कौन सी चीज? विकारों को रखा है। और किसको रखा है? देह अभिमान, विकार, अहंकार। तो विकार में नहीं आया,
अलग से
अलग से। और रावण के संस्कार, पराये संस्कार, अल्पकाल के संस्कार, मध्यकाल के संस्कार। आने वाले संडे की मुरली में बाबा ने चार शब्दों का प्रयोग किया है। ये तुम गलती करते हो, अल्पकाल के संस्कार, रावण के संस्कार, पराये संस्कार, मध्यकाल के संस्कार, इन संस्कारों को अपना समझते हो। ये तुम्हारे है ही नहीं, तुम्हारे है अनादि संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। वरदानी हूं, संपन्न हूं, ये तुम्हारे संस्कार है। सफलता मूर्त हूं, ये तुम्हारे संस्कार है। महादानी हूं, ये तुम्हारे संस्कार है। ये ओरिजिनल संस्कार, बाकी ये जो संस्कार है विकारों के, ये मध्यकालीन संस्कार है, ये तुम्हारे नहीं है। रावण की चीज अंदर रखी है इसलिए डर लगता है। किसको? दादियों को डर लगता है। लेकिन जो कुमारियों ने इतने वर्ष में सेवा की, कुमार स्वास्थ्य सेवा करेंगे, चांस बहुत अच्छा मिलना है। लेकिन पहले तैयार हो जाओ, पहले दादियों को क्या कर दो, निश्चिंत कर दो, बेफिक्र बना दो। जहां कुमार कुमारियां इकट्ठे रहते हैं तो डर लगता है। फॉरेन की बात अलग है, वहां तो फीमेल भी मेल है और मेल भी फीमेल है, वहां की बात अलग है। लेकिन भारत में अगर दो तीन भाई सेंटर चलाए, सेंटर पर केवल भाई लोग हो, तो क्या हो जाएगा? तो लोग डिस्कस करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। और जोश होता है ना तो दंडे भी लग सकते हैं। इसके लिए शक्तियां क्या है, ढाल। इसलिए आप तैयार हो जाओ, आपको सेवा बहुत मिलनी है। और जितनी कुमारियों को सेवा का चांस है, ऐसे अगर आप पक्के योगी बन गए तो थोड़े समय में अपना खाता भी उतना ही जमा हो सकता है। लेकिन बाप दादा को दिल से गारंटी दिलाओ। किस चीज की गारंटी चाहते हैं बाबा? वाटर, इंक और ब्लड, ये तीन से ही लिखकर नहीं चाहिए उसे। किस किस से लिखते हैं? पानी से लिख के देते हैं, स्याही से लिख के देते हैं और खून से भी लिख के देते हैं। और क्या हो जाता है फिर? लेकिन बाप दादा को दिल से गारंटी दिलाओ। कागज वाला बाप दादा नहीं मानते, पेपर बिजनेस नहीं चाहिए बाबा को। आज कागज पर पानी पर, आज कागज पर पानी और स्याही से नहीं, खून से भी लिख कर देते हैं। ब्लड राइटिंग चाइनीज में बहुत पुराना ये सिस्टम है, खून से लिख कर देने की, ब्लड राइटिंग उसे कहा जाता है। तो वाटर, इंक और ब्लड, खून से भी लिख कर देते हैं और एक मास के बाद कुमार से युगल बनकर आते हैं। तो ऐसी गारंटी नहीं चाहिए, इसके लिए बाबा कहते हैं। लेकिन बाप दादा को दिल से गारंटी दिलाओ। लेकिन डायमंड जुबली में बाप दादा ने देखा कि कुमार बहुत अच्छा, सबसे नंबर वन पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कुमार समय को भी समीप ला सकते हैं। समय समीप आ जाएगा और आपकी सेवा विशाल हो जाएगी। लेकिन बाप दादा रोज वतन में चेक करते हैं, ऐसे ही नहीं कोई यहां कहेगा तो मान लेंगे, तुरंत मानेंगे नहीं, बाबा कंफर्म करते हैं ऊपर। प्रैक्टिकल बाप चेक करेगा, फिर देखो कुमार फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। समझा? संदेश देने में तो कुमार वैसे भी होशियार हो, और देखो जिस सेंटर पर कुमार नहीं आते तो वहां सेवा की वृद्धि नहीं होती है। कुमार सेंटर की शोभा है, कुछ दिनों पहले पढ़ा था। ऐसे है ना टीचर्स, टीचर्स कहती है सेवा के लिए किसको भेजे, तो कुमार अभी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये पक्का निश्चय कर लो कि हम है ही पक्के योगी, हम है ही योगी आत्माएं, सदा योगी है, शरीर की तरफ क्या संकल्प स्वप्न मात्र भी संकल्प न जाए। तो कुमार कमाल करना, बाप दादा आपको चेक करेगा, ग्रुप बनाएगा। 9th जनवरी 1996 क्या सुना? स्वयं को तैयार करना है। किस लिए तैयार करना है? क्योंकि समय समीप है और बहुत विशाल सेवा करनी है। वो 7 दिन लगाते हैं, आपको कितना समय लगाना है? 1 सेकंड में। कैसे सेवा करनी है? दृष्टि और वृत्ति से सेवा करनी है। ये केवल कुमारों की बात नहीं है, अभी 7 दिन लगते हैं। समय आएगा जब दृष्टि से सेवा करनी पड़ेगी, वृत्ति से सेवा करनी पड़ेगी। कितने समय में? कम से कम समय में। तो अपनी दृष्टि को और अपनी वृत्ति को इतनी पावरफुल और इतनी पवित्र बना दे कि देह की तरफ संकल्प में भी स्वप्न में भी संकल्प न जाए। ऐसे पक्के योगी, ऐसे योगी, ऐसी गारंटी बाप दादा को दिलानी है। पानी से लिखकर या शाही से लिखकर या खून से लिखकर देने की बात नहीं है, बाबा नहीं मानेगा। तो सेवा कैसी करनी है? पक्के योगी होकर सेवा कैसी करनी है? दृष्टि और वृत्ति से 1 सेकंड में करनी है। सेवा कैसी करनी है कि देह की तरफ संकल्प में भी स्वप्न में भी संकल्प न जाए, आकर्षण न हो, इस देह के आकर्षण से इतने ऊपर उठ जाए, तब सेवा होगी, तब वास्तविक सेवा होगी। ऐसे कुमार, ऐसे कुमारी बाप दादा को चाहिए, ऐसी ब्राह्मण आत्माओं की इस यज्ञ को आवश्यकता है। यज्ञ आह्वान कर रहा है ऐसी आत्माओं की, इन आत्माओं का आह्वान कर रहा है यज्ञ, ऐसी जो आत्मा है जो संपूर्ण पवित्र है, ईश्वरीय प्रेम से जो ओतप्रोत है, ऐसी आत्माएं भगवान को आवश्यकता आन पड़ी है ऐसी आत्माओं की। तो हमारा लक्ष्य क्या है? फिर पक्का योगी बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है? दृष्टि वृत्ति इतनी पवित्र हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या है कि संकल्प में भी स्वप्न में भी ये देह आकर्षित न करे, ये देह मिट्टी अनुभव हो। वृत्ति अर्थात क्या? सबसे पहले तो ये प्रश्न है। वृत्ति अर्थात तरंग, वृत्ति अर्थात तरंग, वेव। एक निस्तरंग झील में यदि पत्थर फेंका जाए तो लहरें उठती है, जो लहरें है वही वृत्ति है। वृत्ति का निर्माण स्मृति से होता है। चित्त में स्मृति क्या है? यदि महान स्मृतियां हैं तो स्वतः ही जो प्रकंपन उत्पन्न होंगे, स्वतः ही जो लहरें उत्पन्न होगी वो श्रेष्ठ लहरें होगी जो चारों ओर फैलेगी। वृत्ति परिणाम है स्मृति का, वृत्ति तरंगे है। तो अपनी दृष्टि और अपनी स्मृति को, अपनी स्मृति सबसे पहले तो इतनी पवित्र बना दे, अपनी स्मृति जो है इतनी पावरफुल बना दे, इतनी शक्तिशाली बना दे कि उस स्मृति के आधार से जो दृष्टि होगी और जो वृत्ति उत्पन्न होगी वो भी इतनी ही शक्तिशाली होगी। तो अपनी स्मृति को और अपनी वृत्ति को क्या करना है? पवित्र बनाना है, पक्का योगी बनाना है। अपने आप को और देह का क्या करना है? देह की आकर्षण से परे। ये 3 होमवर्क बाबा ने दिए हैं। अगर ऐसा कर दो तो क्या होगा? तब से सेवा होगी, तब सेवा का चांस मिलेगा। तो प्रश्न है, ऐसा क्या करें जो यह देह की आकर्षण ही समाप्त हो जाए? क्या ऐसा किया जाए जो यह देह की आकर्षण ही समाप्त हो जाए? यह देह निस्तेज हो जाए, केवल चमकता हुआ सितारा नजर आए, देह मिट्टी अनुभव हो, क्या करें? स्मृति को पावरफुल बनाए और शेख सादी नाम का एक सूफी फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि मैं गुजर रहा था और एक मुर्दे की खोपड़ी एक राहगीर से बातें कर रही थी। कौन?
मुर्दे की खोपड़ी।
एक मुर्दा उसकी खोपड़ी चलते हुए राहगीर से बातें कर रही थी। क्या बात कर रही थी? वह बोली थी, ओ प्यारे जरा होश में चल। खोपड़ी किससे बातें कर रही थी? राहगीर से। क्या कर रही थी राहगीर से? क्या कह रही थी? ओ मेरे प्यारे जरा होश में चल, मैं भी कभी शाही दबदबा रखती थी और मेरे ऊपर ताज था। खोपड़ी कह रही है किससे? राहगीर से। क्या कह रही है? मैं भी कभी शाही दबदबा रखती थी और मेरे ऊपर शाही ताज था। फतह मेरे पीछे पीछे चली और मेरे पैर जमीन पर न पड़ते थे। होश ही न था कि एक दिन सब समाप्त हो गया। खोपड़ी कह रही है राहगीर से, होश ही न था कि एक दिन सब समाप्त हो गया, कीड़े मुझे खा गए। और हर पैर मुझे ठोकर मार जाता है। तू भी अपने कानों से गफलत की रुई निकाल डाल। कानों में क्या डाल रखा है? गफलत की रुई। तू भी अपने कानों से गफलत की रुई निकाल डाल, ताकि तुझे मुर्दों की आवाज से उठने वाली नसीहत हासिल हो सके। मृत देह में कहां है आकर्षण? अस्थि पंजर या देह है, इसमें कहां है आकर्षण? चाहे राजा हो या कोई भी रंग हो, सभी अंत में क्या होने वाला है? वही अंतिम स्थान है। जो भी भाग दौड़ कर रहे हो, कहां पहुंचोगे? वहीं पहुंचना है। ये देह जो है नश्वर है, ये देह जो है व्याधि मंदिर है। क्या है? व्याधि मंदिर। आज ये व्याधि तो कल वो व्याधि, आज ये रोग तो कल वो रोग, कभी रोगों से छुटा नहीं है। कहां है इस देह का सौंदर्य? देख कर आओ जाकर अस्पताल में उन रोगियों को, जिन्हें कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं और पड़े हैं महीनों से जनरल वार्ड में। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, देह से वैसे ही दुर्गंध है, अंग अंग रोगी बन चुका है। कहां है वो सौंदर्य जिस पर कभी तराते थे? कहां गई वो अकड़? व्याधियों से ग्रस्त यह देह, इसमें इतना आकर्षण? सौंदर्य केवल चरण तक है, ब्यूटी इज बट स्किन्ड। इसके अंदर क्या है? चर्म रहित, आभूषण रहित और वस्त्र रहित देह को देखो तो क्या पता चले? क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। देह हड्डियां, अस्थि पंजर, मल मूत्र से भरा हुआ यह देह है, इसमें कहां है सौंदर्य? क्यों इतना इतना आकर्षण? भ्रामक भ्रांतियां उत्पन्न की है उपन्यासकारों ने, फिल्म बनाने वालों ने, चलचित्र बनाने वालों ने, और इस देह को बताया है जैसे बहुत सुंदर है। सौंदर्य देह में नहीं, कल्पना में है। स्वाद वस्तु में नहीं, स्वाद भी कल्पना में है। कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु एक रोगी के सामने रख दो, उसे वो क्यों स्वादिष्ट नहीं लगती? वो स्वादिष्ट है ना, बहुत स्वाद है उस वस्तु में, परंतु जो रोगी है उसको तो कुछ भी स्वादिष्ट नहीं लगता। अर्थात वो स्वाद वस्तु में है या किसी और बात में है? एक पीलिया के रोगी के सामने तंदूरी रोटी रखी जाए और अच्छी मसाले वाली सब्जी, चंद्रशेखर भाई जी खाएगा क्या वो? तो स्वाद कहाँ है, जायका कहाँ है, कहाँ है टेस्ट? क्या उस वस्तु में है या केवल कल्पना मात्र है? एक पुरुष को एक स्त्री बहुत सुंदर दिखती है, पर एक उस स्त्री के भाई को ही अपनी बहन इतनी सुंदर नहीं दिखती। क्यों? स्त्री तो एक ही है, उसे तो उसके सारे अवगुण ही दिखाई देते। वो जिद्दी है, हटीली है, उसके मिजाज ठीक नहीं, सारे अवगुण दिखाई देते, उससे हमेशा झगड़ा करता है। पर दूसरा जो पुरुष है उसे तो वो सुंदर दिखाई देती है, सब कुछ अच्छा लगता है उसका, उसमें केवल गुण ही गुण दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं। क्यों?
इसलिए बाबा ने कहा सबको बहने सुन दो, सब जिद्दी दिखेंगे।
सौंदर्य देह में नहीं है, कल्पना में है। भ्रांति उत्पन्न की है कवियों ने, उपन्यासकारों ने, फिल्म निर्माताओं ने, और युवकों को भ्रमित किया है, दिशाहीन किया है। देह में सौंदर्य कहा, देह मिट्टी मात्र है। कहाँ है सौंदर्य, पूछो उन वयोवृद्ध लोगों से, दांत गिर गए, झुर्रियां पड़ गई है, सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, हड्डियां नर्म हुई है, कमजोर हुई है। कहाँ गया वो सौंदर्य? और इस देह की तरफ आकर्षित होते हो, समझते हो ये देह बहुत सुंदर है, संकल्प और स्वप्न में भी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दे, आत्मा के अतिरिक्त और कहीं पर भी आकर्षण न हो, केवल आत्मा दिखाई दे। देह मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी ही समझना। और देखो आग की लपटों को, वो नहीं देखती कौन था, राजा था, रंग था, सिपाही था, सम्राट था, गरीब था, साहूकार था, सबको जला देती है। बार बार जलती हुई चिताओं को देखने का अभ्यास, तो यह देह का आकर्षण समाप्त होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ नाश होगा, विध्वंस होगा इस संसार में, संपूर्ण विध्वंस। तो अपनी दृष्टि को और अपनी वृत्ति को क्या कर दो, पवित्र बना दो, इतना शुद्धतम बना दो। अच्छा, ओम शांति। मैं
जाने वाला था, चला गया, बेटा बात का भेजूंगी।